समता विलास का एक चैप्टर है शुद्ध निधिध्यास, उसका वचन नंबर 140 है। इसको ध्यान से शुरू करें, फिर इसको विचार करें। तमाम संसार तब्दीली युक्त है, अर्थात परिवर्तनशील है। ऐसे ही हरेक का शरीर, तमाम संसार तब्दीली युक्त है, ऐसे ही हरेक का शरीर ऐसे तब्दील होने वाले चक्र से जागृत होकर के नित स्वरूप आत्मा की खोज करनी चाहिए, जो तीन काल अनादि है। इस प्रकृति की दौड़ में सब अधिक से अधिक जानते हुए भी अनजान है, अधिक प्राप्त अधिक पदार्थ प्राप्त किए हुए भी त्रिखावंत है, अधिक जिए हुए भी जीवन आशा मौजूद है। इस भ्रम जाल से स्वतंत्र होकर के ऐसी खोज करनी चाहिए कि जिसके जानने से सब कुछ जाना जाए और जिसकी प्राप्ति से सर्व प्राप्ति हो जाए, यानी तमाम आशा पूर्ण हो जाए। वह एक केवल सत्स्वरूप आत्मा ही है, जिसने ऐसा निश्चय किया है वह ही परम प्रवीण पुरुष है, अर्थात वही वास्तव में विवेकी पुरुष। ये एक स्थिति है संसारियों की, जिसके बारे में ये वचन बयान कर रहा है। वो कहते हैं कि इस प्रकृति की दौड़ में सब अधिक से अधिक जानते हुए भी अनजान है। मनुष्य के अंदर एक प्यास होती है जानने, जो कुछ भी वो जानता है उससे तृप्त नहीं होता और जानने की संसार में वो कोशिश करता है। धरती को छोड़कर आसमान की खोज में भी लग जाता है, तारों की खोज में भी लग जाता है, सूर्य चंद्रमा की खोज में भी लग जाता है, लेकिन उसकी ये जानने की जो इच्छा है ये तृप्त नहीं होती। जैसा कि आपने सुना होगा कि इसी धरती पर एक वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था आइंस्टीन। सब जानते हैं उसने एनर्जी इक्वेशन की खोज की थी, जिसके आधार पर जो एनर्जी एटम को तोड़ने पर निकलती है उसका कैलकुलेशन होता है। अब जब उसको नोबेल प्राइज मिल गया, लोग सोचते थे कि शायद ये धरती पर सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति होगा, सबसे ज्यादा संतुष्ट व्यक्ति होगा। तो एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपको दुनिया का बेस्ट अवार्ड नोबेल प्राइज मिल गया और आपने जो खोज की है ये एक अनमोल खोज है, जिसको पहले कोई जान नहीं पाया, कर नहीं पाया। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी मृत्यु हो जाए या मृत्यु होने वाली हो, तो आप क्या करना चाहते हैं? और आपका पुनर्जन्म हो, फिर आपको पता है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, फिर आपका पुनर्जन्म हो, तो आप क्या करना चाहोगे? तो उन्होंने एक बड़ा सरल सा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं जो खोज मैंने की है मेरा पूरा जन्म उसमें खर्च हो गया, और केवल इस प्रकृति के एक सिद्धांत की खोज में कर रहा हूं। लेकिन ऐसे हजारों सिद्धांत हैं प्रकृति के अंदर, जिनको वो सत्ता, जो अनजान सत्ता है जिसको हम जानते नहीं, वो उसको चला रही है उन सिद्धांतों में। लेकिन एक खोज करके मेरा पूरा जन्म खत्म हो गया, इसलिए मेरे अंदर एक दूसरी बात आ रही है इस समय कि यदि मेरा पुनर्जन्म है और इंसान का जन्म मुझे मिलता है, तो मैं कभी भी वैज्ञानिक नहीं बनना चाहूंगा। मैं उस सत्ता की खोज करना चाहूंगा जिसके आधार पर ये सारे सिद्धांत काम कर रहे हैं, जिसके जानने से कहा जाता है कि सब कुछ जान लिया जाता है, जैसे कि ये वचन कह रहा है। विचार करिए, लोगों के अंदर जानने की कितनी पिपासा होती है, कितनी प्यास होती है, जानने की जो इच्छा है, इसके बारे में एक यूरोपियन वर्ड है फॉस्टियन कल्चर, अर्थात अधिक से अधिक संसार के बारे में जानते रहो, ज्ञान बढ़ाते रहो, ये भी एक प्यास है, जीने का एक तरीका है लोगों, तो इसीलिए आदमी खोज खोज के मर जाता है, लेकिन उसकी ये प्यास ही बनी रहती है, बल्कि ये प्यास को बढ़ाता यह संसार से बचा हुआ है, क्योंकि जो कुछ जाना उसके आगे तो बहुत कुछ जानने को बचा हुआ है, उसे जिसके अंदर जानने की इच्छा है वो भी अतृप्त होकर संसार से बचा हुआ है। फिर ये दूसरी बात कर रहे हैं, अधिक पदार्थ प्राप्त किए हुए भी त्रिखावंत है। दूसरा एक जो आम लोग हमको दिखाई पड़ते हैं वो भोगवादी जीव, संसार की वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा किया जाए, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्राप्त की जाए और ज्यादा से ज्यादा तरीके अपनाए जाए पैसा कमाने के, ताकि उन भोगों को हम इकट्ठा कर सकें, इसको भोगवादी जीवन कहते हैं। यही मेटेरियलिज्म। तो इस जीवन के बारे में आप सब जानते हैं कि जितना भी इतिहास आज तक का अवेलेबल है, इसमें कोई भी सफल नहीं होता। एक वक्त था जब यूनान दौड़ लगाता था दुनिया की, उसके बाद वक्त बदला, ब्रिटेन का नंबर आया, इंग्लैंड का नंबर आया, उसने दुनिया की दौड़ लगानी शुरू करी, यहां तक कि पूरे ग्लोब के अंदर कोई डायरेक्शन ऐसी बची नहीं जहां उसने देशों को ना जीता, वहां राज्य ना किया। अमेरिका कहां, ब्रिटेन कहां, लेकिन वहां भी वो राज्य कर गया। लेकिन सब कुछ करने के बाद उसके मन की क्या हालत थी, बुद्धि की क्या हालत थी? जो भारत का इतिहास जानते हैं वो जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का कैसे खून चूसा। गरीबी का यह हाल था कि लाखों लोग अकाल से मर जाते थे, भोजन का एक दाना उनको नसीब नहीं होता। 200 वर्ष तक वो भारत पर राज्य कर गया और जब गया तो भारत के दो टुकड़े कर गए, और फिर कौन सा दिन देखना पड़ा जिसने इतना पुरुषार्थ किया हो भोगों के इकट्ठे करने का कि पूरी दुनिया पर राज्य करके मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊं, चक्रवर्ती देश बन जाऊं। वो कहां वापस गया? अपने छोटे से इंग्लैंड में सिमट कर रह गया। उसका भी एक पार्ट हमेशा युद्ध करता रहता है स्कॉटलैंड कि भाई मुझको अलग करो, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं। विचार करो, जिसने पूरी दुनिया पर राज्य किया हो उसकी यह हालत कि अपने देश के लिए वो छोटा सा देश है। भारत का एक राज्य भी उससे बड़ा, तो वो भी अपना देश नहीं संभाल पा रहा। तो विचार करिए कि मन की क्या हालत होगी जिस मन के अंदर वो वासना पाली थी कि पूरी दुनिया के भोग मैं इकट्ठे कर लूंगा, राज्य करूंगा। अब हाल यह आ हा गया कि वो सब छूटता चला गया और कहां आ गया, जहां से चला था वहीं लौट के आ गया। इसीलिए ये भोगवाद की प्यास ये कभी भी शांत नहीं हो सकती। इसलिए सब कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, आपको विवेक दे रहे हैं कि भोगवाद का रास्ता जहर वाला रास्ता है, जिंदगी की बर्बादी का रास्ता है। मैं नकल कर करके आगे बढ़ते जाता हूं, जहां से फिर पीछे लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी आदतें बदल जाती हैं, मेरी आशाएं बदल जाती हैं, मेरी तृष्णा बदल जाती है, इच्छाओं का इतना विकास हो जाता है कि वापस लौट ही नहीं सकता मैं। लेकिन अंदर से घुटता रहता हूं, परेशान होता रहता हूं, कहूं तो किससे, किसी से क्या कहूं? दुनिया को यही दिखाता हूं मैं कि देखो मैंने कितना विकास किया है। इससे अहंकार की पुष्टि होती, सम्मान मिलता है, लेकिन अंदर से जानता है कि मैं किस बेचैनी को लेकर जी रहा हूं और किस बेचैनी को लेकर मैं संसार से विदा हूं। तो इसीलिए अधिक पदार्थ प्राप्त किए हुए भी त्रिखावंत हैं, ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ विश्व के हर आदमी पर लागू होती। इसलिए जिसने गुरु की बात नहीं सुनी, वाणी की बात नहीं सुनी, ईश्वर की बात नहीं सुनी, वो तो फिर कंगाल होना ही होना है। काय की कंगाली मिलेगी हमको? मन की निराशा की, मन की बेचैन की कंगाली लेकर मैं संसार से जुड़ा हूं। तीसरी बात वो कह रहे हैं, अधिक जिए हुए भी जीवन आशा मौजूद है। तीसरी बड़ी लगन होती है मनुष्य अंदर, मैं कहीं मरता नहीं। जीवन श्रद्धा शुक्र उपनिषद ने भी कहा 100 वर्ष जीव, लेकिन वो 100 वर्ष उपनिषद की बात अलग है। वो 100 वर्ष इसलिए थे कि जो जीवन का लक्ष्य है परम शांति, वो मैं प्राप्त कर सकूं। भोग भोगने के लिए आयु की प्रार्थना नहीं की गई, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई। लेकिन मैं प्रभु से क्या प्रार्थना करता हूं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी चले जाओ, गिरजाघर, कहीं भी चले जाओ, एक ही प्रार्थना सुनोगे, भगवान एक कमी मुझे खटक रही है तो पूरी कर। मैं कमी लेकर जाता हूं, वो वही कमी है, संसारी कमी जो मन को निराश कर रही है, मन को अतृप्त कर रही है, मन को बेचैन कर रही है, तो वो कमी मैं ईश्वर भक्ति के द्वारा पूर्ण करने की कोशिश करता हूं। ये संसारियों का ईश्वर है, संसारियों की भक्ति। अब बताइए कि इस उल्टे जीवन की राह जो मैंने पकड़ ली, अब ये शास्त्र, ये प्रभु की लीला, प्रभु का वचन, प्रभु का मार्गदर्शन हमको हमारे जीवन के जीने की जो तरीका हमने अपना रखा है उसकी याद दिला रहा है और सचेत कर रहा है कि तूने जो गलत राह पकड़ी है नकल करके संसारियों की, तू गुरु की बात से जीवन में गुरु धारण कर। गुरु धारण करने मतलब ये नहीं होता है कि फिजिकली गुरु मिलेगा उसको धारण करूंगा तब मैं चलूंगा ईश्वर मार्ग, ऐसा नहीं है। जिस प्रभु ने यह वाणी प्रकट की है, महाराज जी के जीवन काल में तो ये लिखी गई और संकलित हो शास्त्र तैयार हो गया। इसके बाद महाराज जी कितने दिन संसार में रहे, जो संगत बनानी थी वो बना चुके थे। तो ये वाणी उन्हीं लोगों की है जिनको शरीर रूप में कोई गुरु, गुरु का मतलब याद रखिए सतपुरुष होता है जो सत में स्थित हो गया है, जो खुद आत्मरूप हो गया। अब आत्मा से अलग कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है, वो खुद आत्मरूप है, खुद वो ईश्वर रूप, खुद वो ब्रह्म रूप है। इसलिए मैंने उस गुरु की बात को पढ़ना था, सुनना था, सीखना था। जो मार्गदर्शन हमारा कर रहा है उस मार्गदर्शन अनुसार मैंने संसार में अपनी प्रगति करनी थी। जैसे कि अभी आप उदाहरण सुन रहे थे सरल सा सांसारिक उदाहरण कि व्यक्ति की जिसके अंदर प्यास है वो तो जमीन से पानी निकालना चाहता है, लेकिन केवल इच्छा से पानी निकल आता है क्या? उसको खुदाई करनी पड़ती है। और जिसका जैसा स्वभाव है, जैसे जिसके संस्कार है, उसके अनुसार ही उसको खुदाई करनी पड़ती है। किसी को 50 फीट पे पानी मिल जाएगा, किसी को 100 फीट पे पानी मिलेगा, किसी को 500 फीट पे पानी मिलेगा, किसी को 1000 फीट पे ही मिल सकता है। तो वही बात है कि मंत्र में एक ही जाप करूंगा, गुरु मेरा हम सबका एक ही होगा, सिमरन भी हम एक ही तरीके से करेंगे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, मेरे जीवन में भी ऐसे लोग आए जो आज भी मौजूद, इतनी तेज प्रगति हुई उनकी कि हम तो उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। और ऐसे लोग भी हैं जिनको 15-15 साल जप करते हुए हो गया, अन्य कुछ अनुभव भी नहीं करते। अब बताइए, मैं निराश हो जाता, इतना निराश रहता हूं कहता हूं ये तो गुरु बेकार निकला, इससे तो कुछ काम बना नहीं मिला, अब दूसरा गुरु को तलाश कर लेता हूं। ये मंत्र में तो कोई ताकत निकली नहीं, इससे कुछ काम ही नहीं किया मेरा, अब कोई दूसरा मंत्र मैं सीख लेता। जब छोड़ के योग मार्ग पर आ जाता हूं, श्वास के साथ जाप करना शुरू कर देता हूं। इस तरह की कल्पना बना लेते हैं और जो मेहनत करके कुछ हमने खुदाई की थी अपने, वो भी छूट जाता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि एक व्यक्ति के अंदर इच्छा हुई कुआं खोदने, कुआं खोदा उसने, और गांव वाले इसको यही कह रहे थे कि पानी निकलेगा नहीं यहां पर, कई लोग खुदाई कर चुके, लेकिन वो हिम्मत करके खोदता रहा। लेकिन एक अवस्था आई, काफी खोद चुका, तो उसमें विश्वास आ गया कि गांव वाले बात ठीक कर रहे हैं, यहां पानी है, यहां पानी निकलेगा, उसे छोड़ दे। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि उसको पता नहीं था कि एक फाड़ा उसने और चलाना था और पानी का दर्शन उसको होगा। तो इसीलिए आप कैसे पता लगाओगे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक चल रहे हो, नहीं चल रहे हो? केवल गुरु विश्वास ही आपको उस साधना के मार्ग पर लगाए रखेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। गुरु तेरी आत्मा खुद है, सतगुरु तो अंतर, अंतर कौन रम रहा है, अंदर आत्मा ही तो है, शरीर तो अंदर प्रवेश कर नहीं सकता आपको, तो आत्मा ही गुरु बनकर बाहर प्रकट हुआ है, वही आपको वाणी रूप में ज्ञान दे रहा है। तो लाइव गुरु आपको ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान को मैं पढ़ने की समझने की कोशिश ही नहीं करता, कठिन वाणी है, समझ में नहीं आती। तेरी मातृभाषा हिंदी है, अंग्रेजी सीख लेता है, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लेता है, इंजीनियर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, वकील बन जाता है। तो जिसमें तेरी आशा है, जिसमें उम्मीद है, वहां मेहनत करता है और फल प्राप्त करता है, कि यहां मैं निराश हो जाऊं। तो इसीलिए अध्यात्म मार्ग पे चलने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है गुरु विश्वास। पूर्ण गुरु पर जब तक आपका दृढ़ विश्वास नहीं आता, तब तक आपको इस मार्ग में सफलता मिलनी अति कठिन है। गुरु विश्वास ही आपको साधना के मार्ग पर टिकाए रखता है, नहीं तो इतने तरह के मार्ग दुनिया में प्रचलित हैं, इतने तरह के गुरु प्रचलित हैं कि आपको भटका देते हैं। मैं अपनी संगत में भी ऐसे बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को जानता हूं, वास्तव में हम बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, जो महामंत्र का जाप करते करते काफी दिनों करते रहे, फिर एक दिन कहा कि इससे तो कुछ बना नहीं, अब हम दूसरे की तलाश करते। अब जब बुद्धिमानों का यह आदत, तो साधारण व्यक्ति का कहां जाएगा बेचारा? तो इसीलिए सत्संग यही काम करता है। और सत्संग कहते कैसे हैं? सत्संग उसे कहते हैं जो शास्त्रों का मर्म है, जो शास्त्रों के वचन है या जो वाणी है, उसके आधार पर मैं अपने जीवन का सतमार्ग का मार्गदर्शन प्राप्त करता हूं। इसीलिए जो लोग भी शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करते, ये बहाना कर लेते हैं, क्या करें, समझ में नहीं आती, कठिन है, बड़ा रोखा है, वो घोर गलती कर रहे हैं। बड़ी बड़ी रूखी किताबें, बड़ी बड़ी कठिन किताबें संसार की पढ़कर किस लालच में कि पैसा मिलेगा, इस लालच में मैंने बड़ी कठिनाई का पालन कर लिया। गृहस्थ जीवन चलाना, उसका पालन करना, उसकी व्यवस्था करना साधारणता मुझे, पूरा जन्म आपका खर्च हो जाता है, एक एक साल करके आप व्यतीत करते हो, और कितने तंग रहते हो, कितने परेशान रहते हो, लेकिन फिर भी एक चाव रखकर परिवार का पालन करते रहते हो। जिसका बिजनेस नहीं चलता वो भी पैसा कमाने की कोशिश करता है, जिसकी जिसको सर्विस नहीं मिलती वो भी कहीं ना कहीं पैसा कमा ही लेता है, परिवार चला लेता है। तो क्या मैं ईश्वर मार्ग पर नहीं चल सकता? तो मुझको भरोसा होना चाहिए अपने गुरु पर, गुरु ज्ञान पर। आपको इसके लिए ज्यादा तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाणी अपने आप में एक प्रमाण है कि यह पूर्ण गुरु है। वाणी जिसके द्वारा प्रकट हुआ हो, जिसके द्वारा शास्त्र की रचना हुई हो, यह स्वयं प्रमाण है कि वो ब्रह्म ऋषि ही था, वो खुद परमेश्वर था। इसलिए उसकी बात पर भरोसा मैं कर सकता हूं। तो वाणी में आया कि त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्वसिद्धि दाता, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, सब कुछ सिद्धि का मतलब होता है तेरे मन की जो वासना है वो तृप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तू तृप्त हो जाएगी। तो ये वाणी गारंटी दे रही है, त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए, जो इसका डिवोशन के साथ स्मरण करता है उसका अपार कल्याण होता है, अपार मंगल होता है, अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वासना निवृत्त हो जाती है। इस हालत में इस देह का क्या करें? तो वाणी गारंटी जो लिखित दे रही है उस पर भी महाराज जी पर विश्वास करने वाले भी चक्कर खा जाते हैं और छोड़ बैठते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। कितनी गारंटी चाहिए? साधारण बुद्धि वाला भी इंसान समझ लेगा इसका मतलब क्या होगा। कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत्व योग, ज्ञान तत्व कहते हैं ब्रह्म को, पाए ज्ञान तत्व योग वही मोक्ष सिद्धि है। तो कलह कलेश कहां होते हैं? मन के हैं, किस रूप में होते हैं? संकल्प विकल्प के रूप, कल्पना के रूप। ये मन के कहे कलेश, खाली बैठा हूं मन में कोई कल्पना बना ली आपने कि वहां घूमने जाऊंगा, वो तारीफ कर रहा था उस जगह की, मैं भी देख गया, कल्पना तो बन गई आपने, लेकिन उसकी व्यवस्था कौन करेगा? पता लगा कि 50,000 रुपये खर्च होंगे उसको वहां जाने में, और इतने दिन का टाइम लगेगा घूमने में, और फंस गया। कल्पना तो बना लिया आपने, लेकिन इसकी पूर्ति के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा, वो प्यास आपके मन में पलती रहेगी, फिर आप उसको पूर्ण करोगे। लेकिन आपको पता ही नहीं, ये ऐसी बीमारी है जो पैंडेमिक की तरह फैलती रहती है, इसका इलाज कुछ नहीं है संसार को। तो इसीलिए जो सत्पुरुषों का मार्ग है, जो विवेकशील पुरुषों का मार्ग है, वो एक ही है कि मनुष्य जन्म वासना की निवृत्ति के लिए मिला है, वासना की पूर्ति के लिए नहीं। इसलिए वो वाणी सिद्धांत बता रही है, कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागमन दुख सा। बार बार ये देह धारण करनी पड़ती है, फिर इसको कोल्हू के बैल की तरह संसार में लगाना पड़ता है, और सारी जिंदगी अतृप्त रहकर परेशान होकर संसार से विदा हो जाता है, फिर नया जन्म मिलता है, फिर वही प्रक्रिया चालू होती है। आनंद का सागर मेरे अंदर हिलोरे मार रहा है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, गुरु की बात मानते नहीं, उसको पढ़ने की समझने की कोशिश भी नहीं करते, संसार की नकल करके हम पूजा के तरीके अपना लेते हैं। ये नहीं सोचते जिस प्रभु की पूजा कर रहे हैं वो अवतार लेकर धरती पर आया है और मुझको सिखाने आया है ये बात कि तूने मेरी पूजा कैसे करनी है, मैं कहां मिलूंगा तुझको, कैसे मिलेगा तुझको। लेकिन संसार जो कि नकल करने की आदत बनी हुई है, इसलिए अकल का इस्तेमाल नहीं करता, नकल से ही चलता है। जीवन का जो सबसे कीमती काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो भी मैं केवल नकल करके करना चाहता हूं, इसे धोखा खाता हूं। गुरु भी नकली मिल जाता है, पूजा भी नकली मिल जाती है, लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़ते। ईश्वर था अंदर, वैदिक काल से लेके आज तक एक शास्त्र तो बता दो, एक गुरु तो बता दो जो पूर्ण गुरु हो, जिसे कहा पूर्ण ईश्वर बाहर, ईश्वर अंदर। नामदेव संत हुए, और हम तो क्या पूजा करेंगे। नामदेव विठोबा थे, जिसको कृष्ण कहते हैं महाराष्ट्र में, कृष्ण की पूजा क्या करते, और उनकी पूजा का यह हाल था कि कृष्ण उनके साथ खेला करते थे, लेकिन रुक गए एक जगह। तब ज्ञानदेव ने उनको बताया, परीक्षा दी उनकी, परीक्षा में वो फेल हो गए थे, तब वो गए कृष्ण के पास, क्योंकि रोज खेलते थे उनके साथ। तो बोले कि मैं आपके साथ खेलता हूं, मुझे और क्या चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं, संत की बात ठीक, तो कृष्ण नामदेव से कह रहे हैं, जो खुद संत हुए, बात कि संत की बात ठीक है। तब उन्होंने डायरेक्शन बताई, उस डायरेक्शन में जाओ, वहां तुमको एक व्यक्ति मिलेगा, उसके पास जाना, उससे ज्ञान लेना। तो जब वो गए तो क्या देखते हैं, एक नंगा व्यक्ति लंगोटी बांधे जमीन पर पड़ा हुआ, धूल मट्टी में सना हुआ, और पैर उसके शिवलिंग पर रखे हुए। तो नामदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे कहां भेज दिया भगवान ने, ये मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा। तो उन्होंने कहा, भाई ये पैर तुमने शिवलिंग पर रखे हुए हैं, इसको हटा के दूसरी जगह रख दो। तो कहता, मैं बड़ा बूढ़ा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम जहां उचित समझो उसको रख दो। उसने पैर उठा के दूसरे रख दिए, वहां भी शिवलिंग उदय हुई। फिर देख रहा कि शिवलिंग पर ही पैर रखो, फिर तीसरी जगह रख दिया, वहां भी यही हुआ। अंत में उन्होंने अपने ऊपर ही शिकायत रख लिए उनके, तो खुद भी शिवलिंग का रूप बन गए। फिर जो है तब जाकर उनकी बुद्धि खुली, ईश्वर सब जगह मौजूद है। देखो जो सत्पुरुष है वो तो रास्ते शिष्य के लिए तलाश करते हैं, तो उनके ज्ञान आए ईश्वर सब जगह मौजूद है। उस दिन से फिर उन्होंने विठोबा के मंदिर जाना बंद कर दिया, अपने घर पर ही ध्यान में मग्न रहे। तो कृष्ण ने सोचा, इसने तो आना बंद कर दिया, खुद गए उनके पास। कहते, भी तुम आते नहीं मेरे साथ खेलने के लिए। तब ज्ञानदेव कहते हैं कि आप कहां नहीं, उनका ज्ञान चक्षु खुल गया, विकार तो मन में था नहीं उनके, अज्ञान का था। तो बताइए, प्रभु ही मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी बात मानो तो सही है। प्रभु की बात क्या है, जो संत की बात है, पूर्ण संत की बात, जिसको सदगुरु कहते हैं। जैसे महाराज जी हुए, कबीर हुए, गुरु नानक हुए, बड़े संत हुए भारत के भक्त। तो जब मैं उनके ज्ञान के अनुसार अनुभव करता हूं, तब जो है जाकर मेरी तरक्ति होती है। और ये मानव जन सकते ओ जन सकते।